जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। श्रील प्रभुपाद की, गुरुदेव की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्या नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। सब लोग प्रेम से पुकारो, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये, प्रणमामि हरिप्रिये। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद और गुरुदेव सबके आचार्य सबके गुरुदेव, इनकी कृपा से हम लोग वृंदावन धाम में आए हैं। और आज के 21 तारीख के फरवरी के दिन आप सबका पीली पोखर स्थान में स्वागत है। हरे कृष्णा। हम सब लोग इस दुनिया में भगवान को भूलकर भोग लेने के लिए आए हैं, कई जन्मों तक कई योनियों में भटक रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कष्ट भोग रहे हैं, प्रकृति की पीड़ा का कष्ट भोग रहे हैं, शरीर की पीड़ा का कष्ट भोग रहे हैं, अन्य जीवों के द्वारा कष्ट भोग रहे हैं। कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धोरे। कृष्ण को भूलकर हम भोग लेना चाहते हैं और माया हमको पकड़ लेती है और फिर अच्छा मार देती है। लेकिन फिर भी इतना सब हम करते हैं गलत काम, भगवान अपना करुणा का स्वभाव नहीं छोड़ते हैं, हम लोग अपना इंद्रिय भोग का स्वभाव नहीं छोड़ते हैं और भगवान अपना करुणा का स्वभाव नहीं छोड़ते। इसलिए उस करुणा के वश भगवान राधा रानी की कृपा से, राधा रानी की इच्छा से उस गौलोक धाम का एक हिस्सा जो है वो पृथ्वी पर प्रकट करते हैं। जब भगवान के पास ब्रह्मा जी के साथ में पृथ्वी देवी गई थी पुकारते हुए त्राहि माम तो क्षीरोदकशायी विष्णु जो है उनको गौलोक धाम ले गए थे। ये कथा भागवत में नहीं आती, ये कथा गर्ग संहिता में आती। और क्षीरोदकशायी विष्णु ब्रह्मा जी के नेतृत्व में सारी देवताओं को लेकर गाय रूपी पृथ्वी को लेकर गौलोक पहुँचते हैं और सीधे भगवान कृष्ण में विलीन हो जाते हैं सबके सामने। और आगे की सब बात भगवान कृष्ण करते हैं। जब भगवान बताते हैं कि हम आएंगे तो राधा रानी सुनकर बेहोश हो जाती है। राधा रानी उनके साथ में खड़ी, वो बेहोश हो जाती है। तो लोगों को सबको आश्चर्य होता है क्या हुआ, तो उनको होश में लाते हैं। तो कृष्ण पूछते हैं क्या हुआ, उन्होंने कहा कि आप मुझे छोड़ के जाएंगे, इस विचार से मैं बेहोश हो गई। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं आपको लेके जाऊँगा, हम साथ चलेंगे और पृथ्वी पर लीला करेंगे। तो मैं नहीं आऊँगी पृथ्वी पर। अरे एक बार बोल रही है आप जा रहे हैं, इसलिए रो रहे हैं, एक बार बोल रहे हैं आओ तो मैं नहीं आऊँगी, क्या बात है। बात तो बहुत सरल सी है, बात यह है कि जहाँ वृंदावन नहीं रहेगा, जहाँ गोवर्धन नहीं रहेगा, यहाँ पर जमुना जी नहीं रहेगी, यहाँ पर मैं नहीं आऊँगी। तो कृष्ण कहते हैं कि आपके मन की बात जानकर हमने पहले से ही गौलोक का 84 कोस का एक हिस्सा पृथ्वी पर जमुना जी और गोवर्धन के साथ में भेज दिया है। आपका मन मैं जानता हूँ, हम और आप अलग नहीं हैं, हम आप एक ही हैं। तो आपको कोई असुविधा न हो, कोई कष्ट न हो, आपको आनंद मिले, आपका आनंद बढ़े, इसलिए हमने गौलोक का ये हिस्सा पृथ्वी पर भेज दिया है। जो हिस्सा प्रलय के समय में नष्ट नहीं होगा, बाकी सारा जगत जो है वो नष्ट होते रहेगा, लेकिन ये जो है वैसे ही रहेगा चिरंतन काल तक। और आप कहीं वृंदावन से बाहर नहीं जाओगे, वृंदावन से वृंदावन में ही जाओगे। तो इसका मतलब हुआ कि राधा रानी ने चाहा था, इसलिए यहाँ पर गोलोक धाम जो है प्रकट हो गया और इसलिए हम यहाँ पर हैं। क्यों प्रकट हो गया, क्यों प्रकट किया उसको, क्योंकि जीव के उद्धार के लिए भगवान हमेशा सोचते रहते। जैसे कोई पिताजी है और वो अगर उसका लड़का झगड़ा करके घर छोड़ के चला गया है तो माता पिता उसका सोचने का बंद नहीं करते, उसके बारे में बार सोचते रहते हैं क्या करें, उसको कैसे लेके आए, कैसे उसका हृदय परिवर्तन हो जाए, गुस्सा ठंडा हो जाए, कैसे वो सुधर जाए, फिर मेरी जो संपत्ति है उसका भोग लेने के लिए वो आ सके, है ना। ये सब किसके लिए बनाए, मेरा भाई है एक बड़ा भाई, उसके यंग बेटे को, उसका ही फोन था अभी, उसको ऐसी बीमारी हो गई कि अभी बहुत कम साल जिएगा हूँ। तो उनको लग रहा है कि अभी क्या करना है, फिर एक माई सन इज नॉट गोइंग टू बी देयर, वाई शुड आई वर्क। ये समझ रहे आपको माता पिता का भाव कैसे रहता है। वो एक्चुअली ना एक तरह से सब कुछ अपने बेटों के लिए, बच्चों के लिए करते रहते हैं। एवरीबडी माता पिता का भाव समझने के लिए खुद माता पिता बनना पड़ेगा कि कैसे माता पिता अपने बच्चों के विद्रोह के होने पर भी उनका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता है। बच्चे विद्रोह करते हैं, उल्टा सीधा बोल देते हैं, गुस्ताखी कर लेते हैं, हाँ बुरा काम करते हैं, उनका आज्ञा नहीं मानते हैं, गलत काम करते रहते हैं, फिर भी माता पिता का प्रेम कभी उसमें कम नहीं होता है। वो उस पर गुस्सा करेंगे, थोड़ा सा बात भी हो जाएगी, लेकिन प्रेम कभी कम नहीं होगा। भले बेटा छोड़ के चला जाएगा घर पर, लेकिन माता पिता का प्रेम उस पर कभी कम नहीं होगा। वो हमेशा उसके कल्याण के बारे में सोचते रहेंगे, कहाँ खाता होगा, कहाँ सोता होगा, अच्छा होगा क्या बुरा होगा, कि कष्ट होते होंगे उसको, कुछ भेज दे क्या उसको, कोई दोस्त को भेजते हैं, कोई चाचा को भेजते हैं। अगर दुनियादारी के माता पिता अगर इतना प्रेम कर सकते हैं तो भगवान का क्या कह सकते हैं। भगवान तो दिव्य है, सबके परम पिता है, वो कैसे शांत बैठ सकते हैं। हम सब लोग उनको छोड़कर यहाँ पर भोग लेने का प्रयास कर रहे हैं, दुख भोग रहे हैं उस प्रयास में, और कैसे हमारे माता पिता वहाँ गोलोक में आनंद ले सकते हैं। उनका मन जो है वो द्रवित हो जाता है करुणा से, इसलिए सब ये योजना बनाते हैं। ये कंस को भेजते हैं, उसका आतंक करते हैं, पृथ्वी को परेशान करते हैं, पृथ्वी आती है, ये सब बहाना है हमको कृपा करने का हमारे ऊपर। खुद तो लीला करते ही हैं, लेकिन खुद के लीला के साथ साथ उससे भी ज़्यादा उनका उद्देश्य हमको बचाने का है, इसलिए धाम को प्रकट करते, ताकि हम जैसे लोग जो यहाँ पर अनेक कार्यों में लिप्त हैं, अनेक कार्यों में लिप्त हैं, वो उनको याद कर सकें, उनका भजन कर सकें और उनके पास वापस जा सकें। वो ये चाहते हैं कि हम लोग इतनी दुनिया की बहुत आकर्षक वस्तुओं से हमारा मन बहक गया है, टोटली बिविल्डर्ड, मैनी मैनी अट्रैक्टिव थिंग्स, तो वो हटकर उन पर आ जाएं, हमारा दिल फिर दोबारा हम उनके चरणों में आएंगे, तो सारा जो वो लोग वृंदावन है वो हमारा ही है। पिताजी माताजी जो धन कमाते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं, क्या करते हैं उसको बाद में, क्या करते हैं, तो बच्चों के नाम पे लिख देते हैं पूरा, बेटी और बेटे में डिवाइड कर देते हैं, मर जाते हैं एक दिन। उनकी मेहनत का सारा फल थोड़ी भोगते हैं वो, उनकी मेहनत का बहुत सारा फल तो बच्चे भोगते रहते हैं। तो ऐसे गोलोक धाम में इतना आनंद बना के रखा है, क्यों बना के रखा है, वो भगवान के हम जो बालक हैं सब उनके लिए तो है, लेकिन हम लोग छोड़ के आए हूँ गलती करके, फिर भी वो हमको नहीं छोड़ते हैं, बार बार हमारे पीछे पीछे आते हैं, अपनी भी याद कराते हैं, भक्तों को भी भेजते हैं, कृपा करते हैं हम पर। इसलिए जिस समय अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमको अनंत बार भगवान का हृदय में धन्यवाद करना चाहिए कि अगर उन्होंने ये सब नहीं किया होता तो हम लोग वैसे ही भटकते रहते, वैसे ही काम करते रहते, ऐसे ही भूख भोगते रहते हैं ना। किसी को पति कष्ट दे रहा है, किसी को पत्नी कष्ट दे रही है, किसी को बच्चा कष्ट दे रहा है, किसी को मच्छर काट रहा है, किसी को चिकनगुनिया हो गया है, किसी को स्वाइन फ्लू हो गया है। हमारे अभी दो बच्चे हमारे काउंसलिंग के उधर बॉम्बे में एडमिट हैं, बीमार हैं, कितना कष्ट है मालूम है, लाइफ में कुछ दिखता नहीं है। वैन बच्चा एडमिट है स्वाइन फ्लू से तो लाइफ में कुछ सोचता नहीं है, क्या करूँ, वरी, सो मच वरी। तो जो आदमी समझता है कि ये सब जो कष्ट है ये एक्चुअली नेचुरल नहीं है, वो भाग्य का लक्षण है, साइन ऑफ गुड फॉर्चून एंड साइन ऑफ इंटेलिजेंस टू रिकग्नाइज कि यहाँ पर कष्ट है। जिसको ये समझेगा कष्ट है वही उसका इलाज का प्रयास करेगा ना। जिसको पता है कि आप बीमार हो वो डॉक्टर के पास जाएगा, जिसको लगता है बीमार है ही नहीं तो डॉक्टर के पास क्यों जाएगा। वो डॉक्टर के पास जाने के लिए पहले ये अनुभूति होनी चाहिए कि मैं बीमार हूँ, देन यू कैन थिंक ऑफ गोइंग टू डॉक्टर एंड गेटिंग क्योर्ड। तो इसलिए संत लोग डॉक्टर जैसे होते हैं, वो उनको बताते हैं कि भैया आप बीमार हो, इलाज करो अपना, माया के भव रोग से आप बीमार हो, तब जाकर जीव का कल्याण होता है। तो ये जो गौलोक धाम यहाँ पर प्रकट हो गया है उसमें कई वन हैं, कई सुंदर सुंदर जगह हैं, मेन तो उसके तीन हिस्से हैं, एक गौलोक धाम स्वयं जो बलराम जी का विस्तार है, वो भी उधर का भी बलराम जी का ही विस्तार है, पहले अवतार है भगवान के वो, तो ये भी बलराम जी का ही विस्तार है, शरीर उनका विस्तारित हो गया है, वृंदावन धाम, जमुना जी और गोवर्धन। जमुना जी जो हैं वो जब गौलोक धाम में भगवान ने सबसे पहले राधा रानी को प्रकट किया, राधा रानी के बाएं अंग से सब गोपियां प्रकट हो गई, दाएं अंग से सब रानियां प्रकट हो गई, फिर भगवान ने उन सब गोपियों के साथ रास किया गौलोक में, जब उनके शरीर से दिव्य स्वेद निकला, दिव्य जल प्रेम के कारण वो इकट्ठा होकर एक पौंड बन गया, तो राधा रानी बड़ी प्रसन्न हो गई, उन्होंने कहा कितना सुंदर सरोवर है ये, सब गोपियों के प्रेम के द्वारा उसके शरीर से निकला हुआ जल से बना हुआ है, इसको नदी का स्वरूप दे दो। तुरंत वो पौंड जो था वो नदी के स्वरूप में प्रकट हो गया और दिव्य जमुना देवी गौलोक में प्रकट हो गई। फिर भगवान ने गौलोक में बहुत कुंज बनाए, बहुत निकुंज बनाए, बहुत सरोवर बनाए, बहुत सारे वन बनाए, उपवन बनाए। फिर राधा रानी ने कहा कि मुझे ना अभी ऐसी जगह चाहिए जिसमें हम एकांत लीला कर सकें, जो कोई व्यवधान ना हो, हम लोग अकेले अकेले वहाँ पर लीला कर सकते हैं। तो ये राधा रानी बोल रही थी तो उस समय उनके भगवान के वक्षस्थल से एक दिव्य तेज निकला सबके सामने और वैसे आकर प्रकट होकर गौलोक भूमि पर विराजमान हो गया और सबके देखते देखते ही एक पर्वत बन गया विशाल, करोड़ों मील आकाश में करोड़ों मील विस्तार, करोड़ों मील गहराई, करोड़ों मील चौड़ाई, करोड़ों मील आकाश में ऊंचाई, और बढ़ते ही बढ़ते ही बढ़ते ही जा रहा था। तो भगवान ने उसको रोका एक जगह पर, बस इसके आगे मत बढ़ो। वो है गोवर्धन। और जब राधा रानी ने इच्छा प्रकट की तो ये सब जो है लीला के माध्यम से पृथ्वी पर आए। जमुना जी को जब आदेश दिया गया तो जमुना जी कहते हैं कि एक लक्ष घोड़े वाले रथ में बैठकर, जिस रथ के अंदर सरोवर थे, पर्वत थे, रास्ते थे, वन थे, हाँ बहुत सारे सुने की रत्न की घंटियाँ थी, बहुत सारी हजारों सखियाँ थी, ऐसे सुंदर एक लक्ष वाले विशाल शहर जैसे रथ में बैठकर हवा की गति से जमुना जी निकली गोलोक से। फिर ब्रह्म ज्योति वैकुंठों को पार करते हुए, विरजा को पार करते हुए, ब्रह्मांड को छेदते हुए पहले ब्रह्मलोक में उतरी, फिर वहाँ से पृथ्वी पर आई, कलिंद पर्वत पर प्रकट होकर वहाँ से कलिंद नंदिनी के नाम से फिर हम लोग कहते हैं जमुनोत्री, वहाँ से वो आके फिर ब्रज में आई ठाकुर जी की सेवा करते। गंगा जी भी ऐसी आई, फिर गंगा जी तो यहाँ से फिर आकाश गंगा, फिर पृथ्वी गंगा, फिर पाताल गंगा के रूप में पूरा जगह पर उन्हें उद्धार किया है। जमुना जी वृंदावन तक सीमित है, वहाँ से वो आगे चले जाती हैं और फिर गोलोक लौट के जाती हैं। और गिरिराज जी फिर द्रोणगिरी के रूप में, उनके पुत्र के रूप में प्रकट होती हैं, द्रोणगिरी के पुत्र गिरिराज गोवर्धन, फिर पुलस्त्य मुनि के माध्यम से ब्रज में आकर विराजते हैं और इंतजार करते हैं कब आएंगे भगवान। सत्ययुग में आके बैठे हुए हैं, सत्ययुग गया पूरा 17 लाख कुछ सालों का, 17,64,000 साल, फिर तो उसके बाद में 8 लाख कुछ साल, 9 लाख के आसपास त्रेता युग, फिर उसके बाद में द्वापर युग, हाँ नहीं शायद 17 लाख का तो सत्य हो गया, 12,96,00,000, 12,96,000 का त्रेता हो गया, 8,64,00,000 का द्वापर हो गया। इतने सारे लाखों साल, कम से कम 50 लाख तो हो गए उसके अंदर मोस्टली, वेट कर रहे हैं भगवान की सेवा के लिए। फिर भगवान आते हैं, फिर लीला करते हैं। तो भगवान जब लीला करते हैं तो उनका भी कैसा ना, आपका कैसा घर है समझो, आपका गांव में घर है, गांव में घर कैसा होता है, वन बेडरूम का नहीं होता है, गाँव में ऐसा घर होता है, उसके आगे आंगन होता है, आंगन के बाद में एक ऐसा घर के बाहर एक बैठने की जगह होती है, बोलते उसको ओसरी, ओसरी मतलब ऐसा कोर्ट यार्ड ऐसा, वो आंगन से भी अंदर होता है, आंगन उसके आगे होता है, फिर उसमें तो बाहर एक बैठने की जगह होती है, फिर एक दीवान खाना होता है, उसमें सब लोग नहीं आ सकते ना, दूध वाला तो उधर तक जाएगा, फिर कोई मित्र आएगा तो उधर बैठेगा, कोई रिलेटिव आएगा तो उधर बैठेंगे, कोई खास मित्र आएगा तो फिर किचन में शयन कक्ष में जाएगा, अलग अलग हिस्से होते हैं ना, हर जगह पर हर आदमी नहीं पहुँचता है उधर। तो भगवान के घर में भी ऐसे ही गोलोक धाम भगवान का घर है, वो कि तीर्थ में नहीं आता है, तीर्थ होता है वो भगवान अपने घर से निकलकर जब कुछ लीला करते हैं तो उसको तीर्थ कहते हैं। जैसे अयोध्या से भगवान निकले और वनवास करते करते कर नासिक गए, फिर उधर अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए, फिर उधर चित्रकूट में गए, वो सब तीर्थ हैं, उनका निज धाम नहीं है, वो निज धाम अयोध्या है। तो ये वृंदावन धाम जो है वो जगन्नाथपुरी जैसा, मायापुर जैसा निज धाम है भगवान का, ओरिजिनल होम से द्वारका है, श्रीरंगम है, ये भगवान का खुद का घर है, दे वो स्टे देयर इन दैट होम। तो वैसे जितने वन है वो भगवान के ऐसे कोटियार जैसे हैं, और जो ब्रसानंद गांव है उनका अंतपुर जैसे है, इनर मोस्ट चेम्बर्स अंतपुर, और अंतपुर में विशेष लीलाएं होती हैं जो बाहर नहीं होती हैं। जैसे बाहर राक्षसों को मारते हैं, गऊ चराते हैं, ऐसा नहीं कि वो कम दर्जे की लीलाएं, लेकिन वो आम जनता में उसमें सहभागी होती है, आम जनता उसमें भाग ले सकती है। फिर अंतपुर की लीला में केवल गोपियां, राधा रानी, विशेष लोग होते हैं उसके अंदर, सब लोग नहीं आते हैं, राक्षस तो नहीं आ सकते, बिल्कुल ही नहीं आ सकते, लेकिन उस जगह राक्षस भी आते हैं, हमला करते हैं, युद्ध होता है, मारामारी होती है, फिर उनको भगवान वध करते हैं, तो बहुत सारा चीज़ वहाँ पर होता है, वो सब चलता है वहाँ पर, वृंदावन, मधुवन, तालवन, कुमुदवन। लेकिन वृंदावन जो है, ये वृंदावन के अंदर आज का जो वृंदावन है भौगोलिक वृंदावन, वो तो 50 किलोमीटर दूर है यहाँ से, उसका एक एरिया है जो रजिस्ट्री में लिखा है इतना है वृंदावन है, लेकिन जो पौराणिक वृंदावन है उसके अंदर जमुना जी, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, जावट, ये सब सम्मिलित है। पंच योजन का है वो, 20 कोस का है, 84 कोस के कई हिस्से हैं, चार मेन है उसके अंदर, 20 20 20 20, और चार जो कोस हैं वो मथुरा है, बाकी 20 20 के चार हैं, उसको वृंदारण्य कहते हैं, वृंदावन कहते हैं, बाकी सब उसके अंदर आते हैं। तो उसके अंदर जो वृंदावन है वो भगवान को अति प्रिय है, उसके अंदर बरसाना और नंदगांव जो है वो उसके अति अति प्रिय है। वृंदावन के एक हिस्से में तो राक्षस भी आते हैं, वहाँ पर केशी आया था, बहुत सारे लोग आए थे, कुमारा भी गया था, लेकिन इस जगह पर कोई राक्षस नहीं आया है, क्योंकि इस जगह पर ऐसी लीला होती है कि राक्षस तो आकर चांस ही नहीं है, लीला कैसे हो सकती है, इतनी उत्कट मधुर लीला कैसे, राक्षस आएगा तो रस बदली हो जाएगा ना, भाव बदली हो जाएगा, फिर तुरंत युद्ध करने का मूड आएगा, फिर सब लोग डर जाएंगे, फिर सब लोग ऐसे, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर केवल प्रेम और प्रेम और प्रेम, प्रेम अति प्रेम और अति अति प्रेम, यही यहाँ लीला है। इसलिए बाह्य रूप से इसको राक्षसों के और अन्य भाव से मुक्त करने के लिए राधा रानी ने कंस को यहाँ कन्या बना दिया, जब कंस आया था यहाँ पर ढूंढने के लिए, कहाँ गए, गोकुल से रावल से कहाँ चले गए, परेशान हो गया, अपने सेनापति को भेजा तो वो पत्थर बन गए, लौट के नहीं आए, खुद परेशान होकर आया, जैसे बरसाना क्षेत्र में प्रवेश किया तो कन्या बन गया, वो राधा रानी के प्रभाव से और प्रताप से कन्या बन गया। 6 महीने तक गोपियों ने वो कन्या बने हुए कंसनी गोपी के द्वारा कंडे लिपवाए, सब काम कराया, उनसे गोबर उठाया, इकट्ठा करवाया, कंडे बनवाए, उससे सुखवाए, उससे इकट्ठा करवाने को मजबूर किया, टोकरी में लेकर घर में जमा करा दिया, गोबर साफ कराया, गोशाला में गाय को धोया, सब कुछ जो गोपियाँ करती हैं। लेकिन कंस बेचारा रोता रहा, हम सब लोग उस वैसा करने की तमन्ना रखते हैं कि हमको ऐसा मिलेगा तो कितना अच्छा होगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, और कंस को तो अनायास ही प्राप्त हो गया था, फिर भी कंस को अच्छा नहीं लगा, मति उसकी भ्रष्ट थी ना, इसलिए वो गोपियाँ तो रोज करती थी वो काम, हंसी खुशी गीत गाते हुए, कृष्ण को याद करते हुए, आंखों में आंसू करते हुए, रोज गोबर साफ करती है, दूध निकालती है, सब कंडे बनाती है, उसके गीत गाती है, पानी भर के लेके आती है जमुना से, गोपियाँ तो अति आनंद में निवास करती हैं, और वही काम कंस को अनायास ही प्राप्त हो गया तो वो रो रहे हैं, मुझे छुड़ा दो छुड़ा दो, मुझे मुक्त करा दो, गोपियों कृपा करो, फिर दोबारा नहीं आऊँगा, फिर करो, ऐसा क्यों है? कॉन्शियसनेस, क्योंकि हमारी मति जब भ्रष्ट होती है ना, तो सबसे बेस्ट आपको गिफ्ट मिल गया फिर भी आप रोते रहेंगे, अल्टीमेटली आपके पास क्या है इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी मति कैसी है ये इम्पोर्टेंट है, अगर आपकी मति कॉन्शियसनेस सही है तो आपके पास जो भी कुछ है उसमें आप संतुष्ट रहेंगे, लेकिन मति आपकी भ्रष्ट है तो आपको बेस्ट चीज़ मिलने पर भी आप दुखी हो जाएंगे। तो कंस राक्षस होने पर भी बरसाने में एक्चुअली राधा रानी की कृपा से वो इंस्टेंट गोपी बन गया, वो उसको लग रहा है कि मेरे पे तो अभिशाप मिल गया, मुझे तो पुरुष था, इतना वीर पुरुष, इतना दिग्विजयी था मैं, और इतने राक्षसों को मैंने वश में करके रखा है, और वो तो मैं भी कन्या बन गया, कैसे मेरे पत्नी को अस्थि प्राप्ति को मुख मुंह कैसे दिखाऊंगा, जरासंध की पति थी ना, अस्थि और प्राप्ति, दो पत्नियां थी उसकी, उसको टेंशन आ रहा है, हाउ विल आई शो माई फेस टू ऑल माई डीमन फ्रेंड्स, टू माई क्वीन्स, तो वो संकोच में आ गया, जहाँ आनंद की बात है वो संकोच में है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट धाम में आने के पहले अपने कॉन्शियसनेस को तैयार करना चाहिए। अब बैग तो भरते हो, वो स्वेटर डालते हो, क्या क्या वो आप डाक में ही डालते हो, वो भी डाल रखा है बैग में आपने, सब डाला है आपने तैयारी करके, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी तैयारी है कॉन्शियसनेस की, भाव की और मति की। जब भाव और मति कृष्ण के लिए अनुकूल नहीं होगी तो आपकी धाम यात्रा भी व्यर्थ है, देखें क्या है, गंदा पानी है, अरे क्या है, इधर सब कीचड़ पड़ा है, इधर गोबर पड़ा है, इधर सब भैंसे लड़ रही है, क्या है सब, ये क्या धाम है, क्या है, कुछ है ही नहीं, ऐसा लगेगा। का भाव सही रहेगा, आप एकदम कृतज्ञ भाव में रहेंगे, थैंक यू, तो आपका धाम का दर्शन होगा, धाम की महिमा आपके लिए प्रकट होगी, धाम आप पर प्रभाव डालेगा, धाम आपके लिए उन्नति करेगा, धाम आपके लिए प्रेम बढ़ाएगा, धाम आपको विश्व के लिए विरक्त बनाएगा, धाम आपके लिए विरक्ति पैदा करेगा दुनियादारी के लिए, वो कृष्ण के लिए प्रीति बढ़ाएगा। ये सब चेतना के ऊपर है। आपका जो रेडियो का काटा है किधर है उसके ऊपर आवाज़ आएगी आपको, बरसाना पे आपने सेट कर दिया तो बरसाने की आवाज़ आएगी उस पर नहीं तो बॉम्बे की आवाज़ आएगी। अरे शेयर मार्केट में क्या हो गया, अरे उधर क्या चीफ मिनिस्टर कहाँ जा रहे हैं, अरे नरेंद्र मोदी कहाँ जा रहे हैं, जहाँ आपका काटा है उधर की आवाज़ आएगी आपको हमेशा। बहुत सारी आवाज़ चल रही है यहाँ पर, आपका एंटीना किधर है उसके ऊपर आएगा आपका आवाज़। तो हम लोगों को अपनी आवाज़ की जो ज़रूरत है वो बरसाना में सेटिंग करना है आज और फिलहाल उसको फाइन ट्यून करके अभी पीले पोखर में करना है फिर पीले पोखर की आवाज़ आएगी, ऐसा है। तो ये वो धाम है जहाँ पर हम बैठे हैं। पहले हमको समझना चाहिए कि हम कहाँ आए हैं। अरे लगा है घूम के आए हैं, टैक्सी करके चल के कुछ आए, कुछ खाना लेके आए, बस पिकनिक बना रहे हैं। पिकनिक खुद के भोग के लिए होती है, यात्रा भगवान के आनंद के लिए होती है। तो सबसे बड़ा समझने का पॉइंट है, हम लोग घूमने के लिए नहीं आए, हम लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आए, भगवान की सेवा करने के लिए आए हैं। नम्र बनकर हम कुछ सुनना चाहते हैं, नम्र बनकर कुछ करना चाहते हैं, भगवान को प्रार्थना करना चाहते हैं, कुछ धन्यवाद देना चाहते हैं, थैंक हिम कि आपने हमको योग्य समझा आपके धाम में। लेकिन जब आपकी चेतना सही होगी तब आपका आत्मरूप से धाम में प्रवेश होगा। शरीर रूप में आप पहुंच गए इसका मतलब आपने प्रवेश किया ऐसा नहीं है। जब आपकी चेतना सही जगह पर है, नम्र है, सेवा भाव में है, कृतज्ञ भाव में है और भगवान के लिए समर्पित है, अनुकूल है, तो आपका आत्मरूप से धाम में प्रवेश हो सकता है। नहीं तो आकर भी आप नहीं आए, आए और गए। भागवत में लिखा है गधे भी आते हैं, कुत्ते भी आते हैं और सुअर भी आते हैं, ऊँट भी आते हैं, स एव गोखरम। बहुत लोग आते हैं चले जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनका। इसलिए धाम की कथा और धाम के बारे में बताने के पहले ये सब कहना ज़रूरी है, ताकि हम लोग छोटी सी यात्रा क्यों ना हो, कुछ कुछ जगह में क्यों ना जाएं, लेकिन उसका पूरा जो एसेंस है, सार है, वो हमारे हृदय में प्रवेश करे। दिमाग में प्रवेश करेगा लेकिन दिमाग से हृदय में उतरना चाहिए। दिमाग में रहेगा तो दिमाग से एवेपरेट हो जाएगा। दिमाग आध्यात्मिक चीज़ों के रहने की परमानेंट जगह नहीं है। दिमाग केवल प्रोसेसर है, वो आध्यात्मिक चीज़ों को प्रोसेस करता है और हार्ट में भेज देता है। जो हार्ट में बचता है आता है वही अपने साथ में जाता है। बाकी दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन वो आत्मा को तार नहीं सकती हैं। दिमाग से फिल्टर होके प्रोसेस होके जो आत्मा में उतरेगा और जो आत्मा में आप ग्रहण करोगे वही आत्मा के साथ जाएगा जहाँ जहाँ आत्मा जाएगी। इसलिए सबको विनती है कि आप राधा रानी को प्रणाम करो और प्रार्थना करो कि आपके धाम में हम आए हैं, कृपा करके हमको आश्रय दीजिए। राधा रानी आश्रय विग्रह है, शी इज़ दी शेल्टर पर्सोनिफाइड, मर्सी पर्सोनिफाइड, कंपैशन पर्सोनिफाइड। वो हमें आश्रय देंगी, स्वीकार करेंगी तो हमको धाम में प्रवेश मिलेगा। नहीं तो इस धाम में किसी को प्रवेश नहीं है, देवता तक भी आने आ सकते नहीं, कोई नहीं आ सकता यहाँ पर। और जो भी आते हैं उनको सखी बन के आना होता है। ये ऐसा धाम है पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, पूरे निर्माण के अंदर, पूरे गौलोक के अंदर ऐसा कोई धाम नहीं है जिसमें स्वयं ठाकुर जी, अखिल ब्रह्मांड नायक, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान सखी बनकर आते हैं। ऐसा कोई धाम नहीं है। सब जगह वो राजा के रूप में रहते हैं, ऐश्वर्य से लीला करते हैं, राक्षसों को मारते हैं, पूरा सृजन का निर्माण करते हैं। ये भी उन्होंने निर्माण किया, लेकिन फिर भी श्री जी के प्रेम की वजह से, उनके प्रेम के प्रभाव की वजह से वो यहाँ पर सखी बनकर आते हैं। अपना जो स्थान है उसको भी छोड़ देते हैं, भगवान का तो पद छोड़ ही देते हैं लेकिन जो नियंत्रक के रूप में आते हैं उसको भी छोड़ देते हैं और यहाँ पर याचक बन के आते हैं। अरे अगर कृष्ण भगवान यहाँ पर याचक बन के आ रहे हैं तो हम किस खेत की मूली हैं? हाउ वी कैन क्लेम टू बी समथिंग? श्री कृष्णा जो सब सृष्टि के निर्माण करता है, सबके मालिक वही हैं, और यहाँ पर वो ऐसे हाथ जोड़कर दान मांगने के लिए आते हैं। हमको तो आना ही चाहिए भिक्षा बनकर, भिक्षुक बनकर। जब तक जीव यहाँ पर भिक्षुक बनकर नहीं आता है तब तक उसको प्राप्ति नहीं होती कुछ। जीव सोचता है कि मैं कुछ हूँ, तो यहाँ आना बेकार है, कुछ नहीं मिलेगा उसको। अगर आप में पात्र में कुछ ऑलरेडी भरा हुआ है तो कौन डालेगा उसके अंदर? आपको तो खाली करना होगा पहले, जो भी आपने भर के लाया है। तो खाली पात्र होगा तो भिक्षा मिल सकती है, पात्र भर सकता है आपका। तो इसलिए ये भाव जरूरी है, हर एक व्यक्ति को यहाँ पर आते समय सब टोपियों को उतार के आना है। एक टोपी कहती है कि मैं इसका पति हूँ, एक टोपी कहती है मैं यहाँ का डायरेक्टर हूँ, एक कहता है मैं डॉक्टर हूँ, एक कहता है मैं पुरुष हूँ, एक कहता है मैं पढ़ा लिखा हूँ, एक कहता है मैं बहुत सुंदर हूँ, एक कहता है मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। ये सारी जो टोपियाँ हैं यहाँ सब उतार के आना होता है। सारे रजोगुण तमोगुण की टोपियाँ जो है उतार के एक तरह से नग्न रूप में आना है, एज इट इज़ हु वी आर। कौन है हम लोग? सच्चिदानंद आत्मा है, भगवान के पुत्र हैं, भगवान के बालक हैं, उनके अंश हैं। केवल ये एक ही पहचान से हमको यहाँ पर आना है। एक ही कार्ड यहाँ पर चलता है, बाकी कार्ड यहाँ पर स्वाइप करने से एंट्री नहीं मिलती, देयर इज नो एंट्री। यहाँ पर आप आने से मैं कौन हूँ, मेरी पोजीशन क्या है, मेरा अधिकार कितना है मुंबई में, मेरा क्या प्रभाव क्षेत्र है, इसका कार्ड लेकर आएंगे तो यहाँ पे दफा किया जाएगा। इसलिए सब कुछ छोड़कर और सब कुछ भूलकर जब आएंगे हम लोग भिक्षुक बनकर, कितनी बड़ी बात है। अचानक प्रधानमंत्री को बोलेंगे आप भिखारी हो गए, आप फंसाने में आ गए ना, भिखारी होके जाना है राधा रानी के पास, बोलेगा ये क्या चीज़ है? नहीं, दिस इज़ लाइक वेरी रेवोल्यूशनरी थॉट प्रोसेस। लेकिन ये करना ज़रूरी है। अगर जब तक आप इस क्रांतिकारी विचारधारा को नहीं अपनाएंगे तब तक राधा रानी के क्षेत्र में प्रवेश नहीं मिलेगा आपको। इसलिए सब मन की भावना को तैयार करो कि हम लोग यहाँ पर याचक बनकर आए हैं, भिखारी बनकर आए हैं। भिखारी कैसे होता है? उसको लात मारते हैं, उसको ठुकरा देते हैं, उसको निगलेक्ट करते हैं, फिर भी वो दे दे करके पीछे पीछे आते रहता है। बहुत देर दे 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 बोलने में आप भी उसको दे बाबा ले ले चल, है ना, देने वाला भी मजबूर हो जाता है देने के लिए। वैसी भावना होगी तो यहाँ पर कृपा मिलेगी। इसलिए कुछ दिन का संघ है यहाँ पर, कुछ दिन का समय मिलेगा भगवान के धाम के साथ में, इस भावना को बनाए रखिए। और गुरु महाराज ने भी बताया था कि ट्रेन के स्टेशन से उतरने के समय से दोबारा ट्रेन में या हवाई जहाज में बैठने तक हर मोमेंट हमको राधा रानी की कृपा याचना करते रहनी चाहिए। हर क्षण हृदय में, अब बस में बैठे हो, चल रहे हो, गाड़ी में बैठे हो, जा रहे हो, सीढ़ी चल रहे हो, उतर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, हर समय आपको राधा रानी की कृपा याचना करते जाने। कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। हे राधे, कब कृपा करोगी इस भिक्षुक पर, इस याचक पर? कृपा करना हृदय से पुकारता है उसको राधा रानी कृपा करती है। बड़ी भोली और बड़ी दयालु हैं, बड़ी करुणामयी हैं, थोड़े से याचना पर वो प्रसन्न हो जाती है। इसलिए पुकारो राधे राधे, बोलो राधे 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 करुणामयी करुणामयी राधे राधे इस तरह से हृदय में पुकारते रहिए कि राधिका बड़ी दयालु है। प्रामाणिक और जो सीधे हृदय के भक्त होते हैं उन पर तुरंत कृपा कर देती है, तो ये उनका बहुत प्रिय स्थान है। ऐसे तो ये विश्वानु बाबा का कुंड है, लेकिन यहाँ पर राधा रानी स्नान करती है, इसलिए इसका प्रिया कुंड भी नाम है, पीली पोखर भी नाम है। तो संक्षेप में इसकी कथा ऐसी है कि राधा रानी को दुर्वासा जी से वरदान प्राप्त हुआ था, आप जो भी बनाओगी आपके हाथ से बनेगा वो अमृत जैसे स्वादिष्ट होगा। जो भी उसको खाएगा वो रोग मुक्त हो जाएगा, जो भी उसको खाएगा वो परम विजयी रहेगा हमेशा। तो यशोदा रानी ने इसको सुना तो उन्होंने सोचा कि ऐसी ही कन्या हमारे कान्हा के लिए मिलनी चाहिए, तो यहाँ पर आई है वो भानुगढ़ पे। और कीर्ति मैया से उन्हें विनती किया है कि राधा रानी को भेजो हमारे पास भगवान के लिए भोजन बनाने के लिए। तो फिर राधा रानी यहाँ से रोज़ जाती थी नंदगांव में, तो रोज़ यशोदा माई उसको देखती थी, कितना सुंदर कन्या है, कितनी सुशील है, कितनी कुशल है, कितनी शालीन है, कुलीन है, कितने संस्कार वाली है। तो रोज़ देखना, रोज़ सोचना, एक दिन बहुत ज़्यादा प्रेम हृदय में उमड़ आता है तो गले लगाते हैं, तो उसे तुरंत हाथ पीले कर देती है उसके। दैट मीन्स एक्सेप्टेंस, वाग निश्चय, एंगेजमेंट। तो बड़ी खुश होते राजा रानी, लेकिन जब यहाँ लौट के आती है तो बहुत परेशान हो जाती है कि अब मैं घर पे क्या करूँगी, यही संस्कार है तुम्हारे। हाँ, कन्या अकेली गई और उसको सपना अपना संस्कार वाग निश्चय करके आई, ये कहाँ का रिवाज है? माता पिता गुस्सा करेंगे, अभी ऐसा तो नहीं कहा था हमने, खाली भोजन बनाने को बोला था। तो ललिता देवी चर्चा करती है क्या करें, अभी बहुत समस्या है, डांट पड़ेगी, बहुत 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 संकोच वाली बात है। तो ललिता जी ने कहा कि ये कुंड में जो ना अपना हाथ धो लो, अच्छी तरह से साफ कर लो, हम देखेंगे, आपको हेल्प करेंगे, आप साफ कर लो उसको। जब किसी को नहीं बताएंगे, केवल हमको पता है, किसी को पता नहीं, हम किसी को नहीं बताएंगे, चुपचाप चले जाएंगे और किसी को नहीं पता चलेगा। तो राधा रानी हाथ धोती है और घर चले जाती हैं। लेकिन ब्रजवासी जो होते हैं ना वो बड़े सरल हृदय होते हैं और बड़े प्रेम करने वाले होते हैं। हमारे गुरुदेव ने भी एक बार बताया था, हमारे एक गुरु बहन है, उसके पिताजी का देहांत हो गया, तब हम लोग पुणे यात्रा में थे, और उनका पिताजी का देहांत जो है वो मुंबई में हुआ। तो जब देहांत उनका हो रहा था तो गुरु जी ने उस भक्त को बताया कि आपके पिताजी का ख्याल रखना ज़रा, और नेक्स्ट डे उनका देहांत हो गया। तो उसके बाद में उसने जाके गुरु जी से पूछा कि आपको कैसे पता? तो उन्होंने कहा जब हृदय में किसी के प्रति प्रेम होता है तो भगवान के द्वारा, परमात्मा के द्वारा अंदर संदेश मिल जाता है, तो प्रेम होना ज़रूरी है, प्रेम तो बहुत ज़रूरी है। जब प्रेम होता है ना तो बहुत सारी अद्भुत बातें होती रहती हैं। तो ब्रजवासी कैसे हैं? भगवान के प्रेमी हैं, प्रेम में तो डूबे हुए हैं पूरे। तो यहाँ पर आते सुबह अपना अपना सुबह का काम करने के लिए, देखते अरे तो कुंड पीला हो गया पूरा, तो वो उनके दिमाग में पूरा सर्किट चालू हो जाता है। हाँ, राधा रानी रोज जाती है वहाँ पर, मैया यशोदा जी बहुत प्रेम करती है उससे, लगा होगा उसको कि एक बहू होनी चाहिए मेरी, एक दिन भाव विभोर हो गई होगी, भाव विभोर होकर हल्दी लगा दिया होगा उसको, तो वाग निश्चय कर दिया होगा, फिर उसको संकोच हो गया होगा, तो उसने यहाँ पर हाथ धो गए होंगे, धो दिए होंगे, फिर घर चली जाएगी होंगी। अरे इसका मतलब तो एंगेजमेंट हो गया इनका, इसका मतलब हमारे जो मन में बात थी इतने दिन से वो मतलब हो गई, हो गई, हो गई, मतलब अभी वो हो गया होगा, हो गया होगा, तो हो गया, हो गया, हो गया, चेंज हो गया उसका, हाँ, वो क्रियापद चेंज हो गया, वर्ब चेंज हो गया उसका। गॉसिप ऐसा ही होता है, मे बी मे बी मे बी, इट इज़ इट इज़ इट इज़, चेंज हो जाता है। तो ये लोग क्या है ना, अपने आप डिस्कस करते हैं, पहले तर्क करते हैं, तर्क को सत्य का अधिष्ठान देते हैं, और वो सत्य लेकर जाते हैं ऊपर पूछने के लिए, अरे हमने तो सुना कि एंगेजमेंट हो गया। तभी देखो माता पिता को किस संकोच हो गया, मेरी निमित्त सब लड़की है, मेरी कन्या है, मेरे घर पे रहती है, जो पड़ोस सब लोग आ गए पड़ोसी, अरे प्रभु जी आपके बेटे का एंगेजमेंट हो गया? हाँ वो आया, मैं मुझे खुद को पता नहीं, आपको कैसे पता? तो मुझे कितना संकोच लगेगा जब जनता आके मुझे पूछ रही है। तो कीर्ति माता और विश्वानु बाबा को बड़ा संकोच हुआ, अरे पूरे ब्रजवासी बरसाना के बोल रहे हैं कि इनका एंगेजमेंट हो गया और हमें माता पिता को पता ही नहीं है। ऐसा है ना, बॉम्बे में भी ऐसा ही होता है, लड़का और किसी लड़के का प्रेम होता है, पूरी दुनिया को पता होता है, लेकिन लड़के की माता पिता को पता नहीं होता है उसका। Nobody dares to tell them, all the world is gossiping in temple, in everywhere। तो वैसे ही तभी उनको बड़ा संकोच होता है, तो श्री जी को बुलाते हैं, हेलो किशोरी क्या बात है? सर झुकाए खड़ी है, क्या बोलेगी बेचारी? कि हाँ ये तो सच है, हमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन मैया ने हमको इतनी जोर से गले लगाया और आँखों से आंसू आए, प्रेम के इतने प्रेम से आंसू आए, तो हाथ में मेहंदी लगा दिया, अपना हल्दी लगा दिया, मैं तो बाबरी रह गई पूरी, क्या करूँ। जाफरा के हाथ धोए तो उनको भी बड़ी खुशी हुई। राजा रानी को बड़ा टेंशन था, अभी डांट पड़ेगी, क्या पता नहीं क्या होगा, तो भी थोड़े से वाह, आखिर में हमारे दिल में जो बात थी, यशोदा मैया ने खुद ही उसका पहला स्टेप लिया, अच्छी बात है। तो फिर उन्होंने सोचा कि अभी हल्दी लगा दिया है तो अभी हम उसके रिस्पॉन्स में कुछ भेजते हैं। तो वृषभानु बाबा जो है ना, वो एक्चुअली पूरे ब्रज के मालिक हैं, उनका, इनके जो बाबा थे महिभान बाबा, उनका और नंद बाबा के पिताजी का बड़ा प्रेम था। तो महिभान बाबा ने कुछ राज्य का हिस्सा उनके पिताजी को दिया, परजन्य बाबा को, यहाँ का नंदगांव का हिस्सा, फ्रेंडशिप में। तो ये बात राधा रानी और कृष्ण के झगड़े में बाद में आती है, अरे तुम तो बात के बने हुए हो, हमारे द्वारा बनाए गए हो। नोक झोंक होते हैं, नोक झोंक, पता है नोक झोंक क्या होती है? ये नोक झोंक को इंग्लिश में कैसे अनुवाद करेंगे बताओ? यू जस्ट कैनॉट डू इट। नोक झोंक क्या बोलेंगे इंग्लिश में? यहाँ का जो आनंद है ना, वो इंग्लिश में नहीं बोल सकते उसको। तो फिर उन्होंने अपना भंडार खोला मोतियों का, उसके बाद बहुत भंडार है, रत्न का है, पांचों का है, क्या बोलते हैं उसको आप, एक ग्रीन कलर का होता है, एक रेड कलर का होता है, एक डायमंड होता है, एमरल्ड, रूबीज, सफायर, सफायर ब्लू होता है, एमरल्ड रेड होता है और एक ग्रीन होता है, ऐसे अलग अलग मणि हैं सब, वो सब भंडार भरे हुए हैं उनके पास। एक खोल देते हैं मोतियों वाला, पर्ल वाला, और हम लोग क्या करेंगे, एक थोड़ी सी थैली देंगे, इसमें एक 15-20-21 डालेंगे और गांठ मारेंगे, उसको भेज देंगे, बैलगाड़ी भर कर भेजते हैं, संदेश वाले के साथ संदेश भेज देते हैं। अच्छा इधर तो इतना सब हो रहा है, उधर क्या हो रहा है? जब यशोदा माई भाव विभोर था के उच्च स्थिति से जमीन पर आ गई, तो उनको बड़ा संकोच हुआ, अरे बाप रे, मैंने तो बहुत अनर्थ कर दिया, मेरी कीर्ति दीदी क्या करेगी अभी, यही रिवाज नंदगांव के हैं, यही संस्कार है, किसी के लड़के को बुलाते हैं खाने बनाने के बहाने में और उसको एंगेजमेंट कर देते हैं, यही संस्कार है तुम्हारे नंदगांव के, कितना घटिया सोचती होगी हमारे बारे में। नंद बाबा को भी बताया कि मैंने आज ऐसा गलती कर दिया, वो भी दुखी हो गया, अभी तुमने ऐसा क्यों कर दिया, अभी मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा मेरे मित्र को, वृषभानु बाबा को। तो संकोच में आ गए, बहुत परेशान है, परेशान है, क्या होगा क्या होगा। उतने में बैलगाड़ी आती है, पहचान देखी, बैलगाड़ी नंदगा बरसाने से आ रही है, तो कुछ कुछ हिंट मिलता है कि नहीं नहीं इतना सारा गड़बड़ नहीं है, अच्छा है सब कुछ। तो वो आदमी आता है और वो पत्र देता है कि आपके लिए कीर्ति मैया ने ये भेंट भेजी है, ये बताता नहीं है कि आपने जो हल्दी लगाया था ना उसके रिस्पॉन्स में भेजी, ऐसा नहीं बोलते हैं। वो समझते हैं। तो लेवल पे समझ जाते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो फिर कृष्ण भगवान देख रहे हैं वहाँ पर, नंद बाबा यशोदा माई मणियों को देख रहे हैं, अरे इतनी सुंदर मणि हमारे पास तो नहीं है, इतने मणि, उनका ऐश्वर्य हमसे अधिक ज़्यादा है, राधा रानी सब ऐश्वर्य का स्रोत है ना, सभी भाग्य लक्ष्मियों की स्रोत राधा रानी है, सब ऐश्वर्य सब तो यहाँ पर है, तो वे क्या करें, हमारे पास तो ऐसा नहीं है, तो हमको भी कुछ रिटर्न में, अभी तो ओह अच्छा हुआ कि वो नाराज़ नहीं है हमारे पर, अच्छा हुआ कि हमने जो गलती किया उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया कृपा में, उसको हमारी डांट पड़ने वाली थी या डंडा होने दंड होने वाला था, तो उसके बदले में उन्होंने तो गिफ्ट भेज दिया बैलगाड़ी भर के। तो फिर देखा कि हमको भी कुछ करना चाहिए, अभी चलो अभी टेंशन तो खत्म हो गया, संकोच खत्म हो गया, डांट पड़ने वाली थी वो भी कैंसिल हो गई, अभी हमको भी रिस्पॉन्स में कुछ भेजना चाहिए। लेकिन सोचते हैं कि हमारे पास तो नहीं है, चिंता करने लगे। तो कन्हैया जी आते हैं, बोलते हैं अरे आप चिंता क्यों करते हो, एक मोती मुझे दे दो, मैं उसको खेत में डालूंगा, अच्छा जल दूंगा, मोती की खेती करूंगा, फिर ढेर सारे मोती मिलेंगे आपको, ले लो। तो ये जोर से ठहाका मार के हंसते, हा, देखो हमारा बालक, छोटा सा बालक है, उसको क्या है पता नहीं कुछ। तो फिर वो अपने मोती सब संभाल के रखते हैं, तो हमारे कन्हैया जी एक चुरा लेते हैं उसमें से, ऐसे कहते हैं कि जो मैंने पढ़ा है गर्ग संहिता में, उन्होंने ना 1 करोड़ मोतियों की माला बनाकर भेजी थी, 1 करोड़ मालाएं अच्छी तरह से, उसमें एक माला ही चुरा दें और उसको जाकर पीछे आंगन में अच्छी तरह से गड्ढा खोद के बो देते हैं, ब्रजरस डालते हैं उसको, पानी भी डालते हैं, आ जाते हैं। अगले दिन मैया जो है वो देखते हैं एक माला गायब, तो बोले अरे माला किसने ली, तो वही सोचती है कि हमारे घर में हमारे देश में तो एक ही चोर है, वो हमारे घर पे ही है, उसको ही पूछो। तो कहते कि आपकी चिंता को देखकर मैंने ऐसा किया है, एक मणि लिया, एक माला ली, उसको खोल कर मैंने सब बो दिया है। अच्छा अच्छा देखो बहुत अच्छा पौधा आया है। तो फिर से डोच ठहाका मार के हंसते हैं, बोलते हमने तो कितने धान नहीं बोए ना वहाँ पर, उसके तो बहुत सारे पौधे आते होंगे, तो बाल हट के वजह से चलो चलो जाके देख के आते हैं। तो मैया मामा जा रहे हैं, देख रहे हैं अच्छे छोटे छोटे पौधे आ रहे हैं। अगले दिन बोलते हैं जाओ खेत भर गया है मोती से, तो फिर से वो जोर से हंसते हैं, अरे कैसे हो सकता है ये मोती की खेती। वो ठहाका मार के हंसते, बोले ये तो बच्चा है उसको तो पता ही नहीं है क्या होता है, खेती तो धान्य की होती है और ये मोतियों की होती है, मोती तो समुद्र के अंदर वो उसके अंदर मिलता है। फिर भी बाल हट्टे तो जाते हैं दोनों, भैया बालक हट कर रहा है, नहीं आपको आना ही है, आपको आना ही है दर्शन करने के लिए। जाके देखते तो क्या है, पूरा खेत चमक रहा है एकदम चकाचौंध, सारे मोती मोती लगे हुए, अनंत मोती, एक बैलगाड़ी क्या 10 बैलगाड़ी भर सकते हैं। तब नहीं हंसे ठहाका मार के, अरे तो बच्चा है, तब तुरंत मोती बिनने लगे। क्योंकि अभी हंसने का समय नहीं, अभी मोती बिनने का समय है। तुरंत मोती बिन लेते हैं और वो मोती फिर रिटर्न में भेजते हैं बरसाने में। फिर राधा रानी क्या करती है, उस मोती को लेकर एक सुंदर गांव है यहाँ पर डभारा, डभारो मतलब जहाँ पर राधा रानी को देखकर कृष्ण बहुत भाव विभोर हो गए थे, अति भाव विभोर, डभरारो यानी ही इज लाइक टोटली ओवरवेल्म्ड, इसलिए उसका नाम पड़ा डभरा। उधर एक जगह पर राधा रानी ने कृष्ण से भी अद्भुत काम किया, कृष्ण ने क्या किया, मोती बोया, मोती निकाला, फिर राधा रानी ने वो मोती को बोया और डायमंड निकाला, रत्न निकाला, इसलिए उसका नाम है रत्नकुंड। जहाँ पर उन्होंने रत्नों की खेती की थी वहाँ पर एक कुंड है आज, उसका नाम रत्नकुंड है, जिस जगह पर राधा रानी ने अपने प्रताप से मोती बोकर रत्न निकाले थे। तो ऐसा ये धाम है, कहाँ से कहाँ लिंक हुआ उसको देखो आप। तो ये प्रिया जी का बहुत बहुत ही प्रिय कुंड है, यहाँ पर वो रोज अपने सखियों के साथ स्नान करती है। कृष्ण यहाँ आते हैं, उनको चिढ़ाते हैं, उनके साथ में नोक झोंक करते हैं, सखियाँ स्नान करती हैं यहाँ पर। तो ये जब लीला हुई तो कृष्ण तो वहाँ पर है, उनको पता नहीं यहाँ पर क्या हुआ, तो उनको वहाँ पर बहुत देर रहा नहीं जाता है, तो वहाँ से आते हैं। तो ऐसे एक दिन घूमते घूमते राधा रानी की याद में आए और यहाँ पर आए, देखा तो अरे कुंड पीला हो गया, पहले तो अच्छा था, पीला कैसे हो गया, तो बड़ा आश्चर्य हो गया उनको, उनको पता नहीं यहाँ पर बैकग्राउंड क्या है। तो वो ऐसे सीढ़ियाँ उतर कर कुंड में जाते हैं, देखते हैं तो अरे पानी पीला हो गया, उसमें उतरते हैं, ऐसा उठाकर हाथ, मोर पंख पहना हुआ है, हाथ उठाए, ये पीले वस्तु क्या है क्या है, ऐसे करके उतरते हैं, पूरे पूरे कुंड में डोलते हैं, पूरे कुंड में एक एक जगह एक स्थिति ऐसी होती है कि उनका केवल मोर पंख दो हाथ ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं पानी के ऊपर, तीन चीज़ें ऐसी पूरे कुंड में घूम रही है और पूरे वातावरण में आवाज़ गूंज रही है कि ये पीली वस्तु क्या है, ये प्रश्न जो है वो गूंज रहा है, ट्रीज एंड एवरीथिंग इज रिजाउंडिंग विद द क्वेश्चन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। उसके बाद में वो तीन चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे बाहर आती है, मतलब कृष्ण बाहर आते हैं, जो बाहर आते हैं तो पूरे पीले हो जाते हैं, फिर भी पूछते हैं पीली वस्तु क्या है, पीली वस्तु क्या है, सब ब्रजवासी देख रहे हैं, अरे ये तो काना है, अभी तो नीला उतरा था वो पीला बाहर आ गया, ये कैसे हो गया। तो एक प्रश्न पूछ रहे हैं वो कि पीली वस्तु क्या है, उसका उत्तर क्या है, उसका उत्तर आपको देना है, व्हाट इज द आंसर। राधा रानी का प्रेम है, वो राधा रानी का प्रेम, उससे वो रंग गए पूरे। और पहली बार कृष्ण ने यहाँ पर वो सिग्नल दिया है कि मैं अगले अवतार में इसी रूप में आऊँगा, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। ऐसे हमारे परम पूज्य बरसाना स्वामी महाराज जो हैं उन्होंने ये कथा बताई थी जब वो मुंबई में हॉस्पिटल में आए थे, तो ये भी यहाँ पर हुई है। उसके बाद में यहाँ पर जब होली होती है ना, होली होली का मौसम है, तो होली के लिए बहुत ढंग से न्योता आता है नंदगांव से, नंदगांव से अभी भी वहाँ से गोसाई लोग आते हैं, और यहाँ के गोसाई लोगों को आमंत्रण देते हैं, होली खेलने के लिए आ जाओ, ये भाव से कि नंदलाला जो है राधा रानी को बुला रहे हैं। तो वो है पांडे, उसका नाम है पांडे, वो एक अच्छा पोस्ट है जो कृष्ण के संदेश लेकर आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर मिलते हैं गोपियों को, राधा रानी को मिलते हैं और कहते हैं कि हमारे लाला जी आपको कल होली के लिए बुला रहे हैं। तो ये सखियाँ इतनी चालाक होती है ना, वो सब मिलकर ये पांडे को धो डालते हैं कलर से पूरा। आप सोच सकते हैं ना, बीच में एक आदमी आया है और ढेर सारी औरतें खड़ी हैं और सब उसको रंग में भिगा रही है, बेचारा क्या करेगा, हाउ यू कैन रिस्पॉन्ड। तो ही ओनली गेट्स ओवरवेल्ड और वो ही इज़ हैप्पी बट ही इज़ लाइक यू नो ओवरवेल्ड, पूरा प्रभावित हो गया पूरा। तो राजा रानी बाद में आती है, अरे तुम इस पांडे को परेशान क्यों कर रहे हो, वो तो उसका खाली मैसेंजर है, उसको तो आने दो, फिर उसको धोएंगे हम लोग, लेकिन तुम इसको ही धो रहे हो उसको। फिर आके प्रेम से उसको लड़कियों के चंगुल से छुड़ा देती है उसको, बड़ी दया से करुणा से कि इसको परेशान मत करो। फिर वो बेचारा गीला हुआ है पूरा, कपड़ा सा उसका रंग से भरा हुआ है, तो बड़े प्रेम से अपने घर ले जाती है उसको और घर में जाकर फिर स्नान करने की व्यवस्था करती है, गर्म पानी से बहुत अच्छी तरह सुगंधित द्रव्य से, फिर नए वस्त्र देती है, फिर नया फेटा देती है, नया उत्तरीय वस्त्र देती है, सम्मान है ना ये, पेठा और वस्त्र देती है, भोजन कराती है बड़े प्रेम से, भेंट वस्तु देती है, बड़े सम्मान के साथ में नंदगांव वापस भेजती है। ये राधा रानी की करुणा है, जब कोई जीव परेशान दिखता है ना तो राधा रानी आकर उस पर कृपा कर देती है। फिर अगले दिन श्री कृष्ण भगवान नंदगांव से निकलते हैं होली खेलने के लिए, उसका बहुत सुंदर वर्णन किया गया है उस बारात के अंदर, जुलूस के अंदर। हाँ, कौन कौन थे, सब लोग थे, ब्रह्मा शिव जी सब देवता सब ऋषिगण, सुखदेव व्यास जी जितने भी सप्तऋषि जितने भी ऋषिगण हैं सब लोग अपना अपना भेष बदल कर, वो तो सुखदेव जी तो नग्न अवस्था में आए थे, डोल रहे थे आनंद से प्रेम से, और शिव जी पांच मुख वाले ब्रजवासी बनकर आए थे, ब्रह्मा जी चार मुख वाले बनकर आए थे, सब उनकी पत्नियां भी ब्राह्मणी बनकर आई थी, और सब ये जुलूस में जा रहे हैं बरसाने की ओर, बहुत सुंदर वर्णन उसके अंदर आया है। तो यहाँ पर पहुँचते हैं तो फिर जुलूस पीछे, जुलूस को प्राइवेट लीला में एंट्री नहीं होती ना, रहो उधर खड़े रहो तुम जाएंगे आगे। तो यहाँ पर आते हैं और आपको देख रहा है क्या शिव जी का मंदिर, यहाँ से देखो दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ से श्री जी को पुकारते हैं कृष्ण भगवान, यहाँ पर पीली पोखर पर खड़े होकर श्री जी को होली खेलने के लिए पुकारते हैं। तो श्री जी उस समय किसी कारण से रूठ के बैठी हुई है और ललिता जी उनको मना रही है, तो यहाँ पर आते हैं तो श्री जी नहीं है, विशाखा देवी और सखी आए, तो विशाखा को इशारा इशारे से पूछते हैं कहाँ है श्री जी, तो कहती है वो महल में है रूठी हुई है, तो उसको इशारा करते जाओ उसको ले आओ। वहाँ पर ललिता जी बोल रहे, अरे अभी तो रूठना छोड़ दे, देखो कन्हैया जी दूल्हा बनकर आए हैं, देखो होली खेलने के बुला रहे हैं, ये रूठ के बैठने का समय नहीं है, तो लीला करने का समय है, और देखो रंग लेकर सज सज के आए हैं आपका वेट कर रहे हैं, चलो जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। तो वहाँ उस उतने में विशाखा वहाँ पहुँचती, अब बताती वो आ गए मैं उनसे मिलकर, वो आपको बुला रहे हैं, ये बताने के लिए आई हूँ मैं, चलो जल्दी जल्दी, फिर तुरंत मान जाती है। फिर पुकारते हैं तो श्री जी झरोखे में आती हैं, ऐसे आपके उधर गैलरी गैलरी में आती हैं, फिर दर्शन करते हैं श्री जी का, तुरंत पिचकारी निकालते हैं, यहाँ से पिचकारी लगाते हैं, लेकिन वो पिचकारी जो है ना उधर तक नहीं पहुँचती है, बीच में ही गिर जाती है। तो फिर हृदय से पुकारते हैं तो उनकी पुकार वहाँ तक पहुँचती है, तो फिर वो सज धज के नीचे आ जाती है, यहाँ पर उनका दोबारा मिलन होता है सखियाँ वहाँ से, यहाँ सखा सब लोग आते हैं। फिर वो लोग तय करते हैं कि अभी हम होली खेलेंगे। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। होली खेलते हुए कुछ होता है क्या, नहीं, यू कैंट स्लीप वेल होली इज बीइंग गोइंग ऑन। तो फिर वो तय करते हैं कि अभी हम सूखी होली खेलेंगे, मतलब खाली रंग जो है ना फूलों का बना होता है, गुलाल है अबीर है अलग अलग प्रकार के रंग के फूल होते हैं, उसका पाउडर बनाते हैं, ऑयल पेंट नहीं होता उसके अंदर केमिकल नहीं होता है, शुद्ध फूल के रंग होते हैं और प्रेम से उसको लगाते हैं। अरे वो थी गीली होली जो पिचकारी में डालकर लगाते हैं, तो अलग अलग खेलते हैं उसको, मिक्स नहीं करते उसको। तो पहले फिर सूखी होली खेलने का टाइम हो जाता है, तो दोनों पार्टी के अंदर सूखी होली का चालू होता है। तो राधा रानी और उनकी सखियों का इतना प्रेम है और इतना प्रभाव है, तो धीरे धीरे कृष्ण की पार्टी हारने लगती है उसके अंदर, और कृष्ण परास्त होने लगते हैं। तो कृष्ण बहुत वैसे है ना,
चतुर चालाक भी है बहुत। जब हाथ में लगते हैं सूखी होली में, तुरंत पिचकारी निकालते हैं और पिचकारी का शुरू कर देते हैं। तो राधा रानी को समझ में आता कि ये तो अभी गुस्सा क्यों कर रहे हैं, मतलब उद्दंडता कर रहे हैं, तो तुरंत ऐसे हाथ कर देती हैं कि हाथ पे वो पिचकारी की धार रोक लेते हैं। फिर भी हाथ को धार लग के इसमें से कुछ धार छींटे जो है ना गाल पे गिरते हैं लाल रंग के। तो जैसे ये होता है ना, हाथ से रोकते हैं, हाथ से छींटे गाल पे गिरते हैं, तो जो गाल पे जो सुनहरे गाल पर जो बिंदु गिरे हुए हैं वो इतने सुंदर लगते हैं राधा रानी के गाल पर चेहरे पर कि वो पिचकारी छोड़कर देखने लगते हैं उनको, ऐसे बावड़े होकर देखते रहते हैं, अरे ये कितना सुंदर दृश्य है। लेकिन दोनों ने उद्दंडता की है ना, जैसे ही वो जैसे कोई शस्त्रधारी है समझो, शस्त्र लेकर सबको मार रहा है, अचानक शस्त्र कर देता है, तो क्या करते हैं तुरंत जाके उसको पकड़ लेते हैं, है ना। तो ये तो आतंक कर रहे हैं, लेकिन अभी आतंक के बाद में जो दृश्य दिखाई पड़ रहा है उससे इतने प्रभावित हो गए तो देखते रह गए उसको। तुरंत सखियाँ जो है वो नाराज़ हो गए ना कि इन्होंने भी ये जो खेल का जो नियम था तोड़कर पिचकारी मार दिया। तो सब जाके झपट के कृष्ण को पकड़ते हैं, ऐसा पकड़ते हैं दोनों हाथ उल्टा करके ट्विस्ट करके उसको लॉक कर देते हैं। और ललिता देवी हमारी चीफ जज है ना, यहाँ की चीफ जस्टिस ऑफ परसाना, उसको बस लेके आते हैं। ये हमारा क्या कहते हैं उसको, गुनहगार है, उसको दंड दो, उचित दंड दो। सलाह मशवरा करते हैं ललिता विशाखा सब बैठ के, क्या करना चाहिए इसको। तो कहते हैं इसका उत्तरी वस्त्र खींच लो, ये सबसे बड़ा यहाँ का आप जो मान सम्मान का जो वस्त्र पहन के आए उसको छीनना, मतलब इस इंसल्ट। जैसे वो उत्तर था ना, उत्तर विराट का पुत्र, वो जब गया था ना युद्ध करने के लिए और बृहन्नला उसकी सारथी बनी थी, तब उत्तरा जो थी उसकी बहन वो कहती थी अगर भैया युद्ध में जीत जाओगे ना सब कुरु वंशियों के उत्तरी वस्त्र लेके आना, मैं उस पर गुड़ियों को सजाऊंगी। तो उत्तरी वस्त्र खींच के आना मतलब यू आर डिफीटेड, वी आर स्नैच्ड योर अपर क्लॉथ। और इसका उत्तरी वस्त्र छीना जाए, इसकी पगड़ी छीनी जाए, और क्या किया जाए, इसको हाथ में बांध कर इसके आंखों में काजल लगाया जाए। अभी आप लोग को काजल लगाते हो ऐसा बड़ा प्रेम से, ऐसा लेते हो फिर ऐसा करते हो, ऐसे प्रेम से लगाते हो, वो दंड ऐसा नहीं होता है, ऐसे हाथ डालते हैं और ऐसे लगाते हैं चोरदार। तो इसको तय होता है कि ये दंड दिया जाए, तो उसका पूरा फेटा छीनते हैं, उसका उत्तरी छीनते हैं, फिर उसको राधा रानी को बोलते हैं कि दंड आपको देना है। तो राधा रानी के हाथ काजल में डुबाते हैं, उसको सामने लेके आते हैं ऐसे हाथ पूरे घुमाकर। तो जो लगाने जाती है तो ये मुँह घुमा लेते हैं, ये ऐसा मुँह घुमा लेते हैं, फिर दो सखियाँ आती है उसका मुँह पकड़ते हैं टाइट, फिर राधा रानी उसको काजल लगाती है। इस तरह से यहाँ पर प्रेम की लीला होती है और कृष्ण को दंड मिलता है। ये भी इधर ही हुआ था, तो राधा रानी की, श्री कृष्ण भगवान की, परसाना धाम की जय, जय श्री राधे श्याम। यहाँ की लीला तो अथाह सागर जैसी है, एक बूंद भी हमको मिलेगी तो भी काफ़ी है, इतनी नित्य लीला चलती रहती है यहाँ पर। आप कदम के पेड़ के नीचे बैठे हो, उधर पीछे बरगद का पेड़ है, इधर नीम का वृक्ष है, इधर पीलू का वृक्ष है, हर प्रकार के जो महान वृक्ष हैं वंश की शोभा बढ़ाने वाले वो सब इस कुंड के आसपास विराजमान हैं। यहाँ पर तोता आते हैं, यहाँ पर मोर आते हैं, सुंदर आवाज़ में भगवान को पुकारते हैं, इतना सुंदर वातावरण यहाँ पर है। तो प्रेम के लीलाओं के लिए बहुत अनुकूल वातावरण है। तो अभी हम लोग यहाँ पर प्रसाद पाएंगे।